Ya Ali Madan. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 439.
Ya Ali Madan. Din daro 4-5 baras ke baad aap is jamaat ki mulaqat ke liye aaya hoon. Main bada khush naseeb hoon. डोडोमा इस मुल्क का कैपिटल है और मैं कैपिटल में आया हूँ कैपिटल की जमात को मिलने के लिए. आपकी ये जमात बहुत पुरानी जमात है. इस जमात को अगर मैं नहीं भूलता तो जो कुछ भी मेरे पास सुनी हुई और लिखी हुई चीज़ें हैं, मोमिनो ये जमात जर्मन टाइम से यहाँ है. भले जमात खाना यहाँ 1920-21 में बना, लेकिन इसके पहले जो थोड़े से इस्माइली थे उनके घर के अंदर जमात बैठती थी. पहली लड़ाई 1914 में हुई, उसके पहले आपकी जमात आपकी वसाहत यहाँ थी. आप ख्याल करो 1900 बरस की ये डोडोमा जमात है. सतगुर कह रहे दिल माहे देवल पूजिए अने दिल माहे देव द्वार. दिल माहे साया आपे वसे अने दिल माहे आपे दीदार रे. भाई दिल माहे आपे दीदार. मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो. अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद. 1954 में 1954 में हजरत मौलाना धनी सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि कैरो आए. आपको जो मालूम होवे तो फरवरी महीने के अंदर कैरो में सिंबॉलिक प्लेटिनम जुबली की सेरेमनी हुई थी. वहाँ उस जमाने के अंदर सबसे अच्छी होटल थी सेमी रेमिस, उसके हॉल में ये सिंबॉलिक सेरेमनी हुई. लेकिन मैं ये जुबली की बात नहीं करता. उस वक्त दार सलाम की जो लोकल इस्माइली एसोसिएशन की कमेटी थी उसका एक जो चेयरमैन था अलीजा, जो कि मरहूम हो गए, खुदा उनको अपने हुजूर में रखे, गुलाम हुसैन राजानी. लटिनम जुबली के बाद मौला ने जो व्यक्तिगत मेहमानियां वगैरह कबूल की उसमें ये गुलाम हुसैन राजानी ने अपनी मेहमानी रखी. उसको मौका मिल गया, मौला से बहुत सी बातें हुई. जब उठने लगे तो मौला फरमाया, देखो तुम एसोसिएशन के चेयरमैन हो, मैं जमात के लिए एक मैसेज देता हूँ, तुम खुद जमात में खड़े होके मेरा मैसेज देना. भले खुदावर. मौला फरमाया, जमात को कहो कि मंदिर के मस्जिद के जमात खाना अगर टूट जाए तो तुम दूसरा बना सकते हो, लेकिन अगर तुमने किसी मोमन का दिल तोड़ दिया तो मबा फरमाया वो नवा नहीं बनता. मेरा मैसेज देना और जमात को कहना मैंने ये फरमान किया है, हिल मिल के रहो, मोहब्बत प्यार से रहो. गुलाम हुसैन राजानी ने आके जब जमात को ये मैसेज दिया तो मैंने उसी दिन उसके बाद वाइस भी की. दुनिया के अंदर इंसान कितना जिएगा? आज की इस दुनिया के अंदर 165 बरस की उम्र का आदमी अभी भी जीता है, 165 बरस। वो 2 बरस पहले लंदन से पास हुआ और न्यूयॉर्क जाता था। 1822 के अंदर उसका जन्म है और आज भी जीता है, पांव से चलता है और मजे करता है। पाकिस्तानी है, शायद वो 200 बरस भी जिए, लेकिन आखिर तो एक दिन मरना है ना। पीरों के गिनान के अंदर हमारे दिल को खोलने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं। 100 बरस नहीं, 200 बरस। लेकिन पीर कहते हैं 100 बरस लगी जीवना, बंदे आकर मरना भी होई। भले 100 बरस जियो के 200 बरस जियो। नूह अलैहिस्सलाम की, नूह नबी थे, उनकी उम्र 1050 बरस की थी। 950 बरस तो नूह नबी की नबूवत चली, 100 बरस की उम्र में उन्होंने नबूवत जाहिर की। आदम अलैहिस्सलाम की 1000 बरस से ज्यादा नबूवत चली, उम्र भी 1100-1200 होगी ना। तो क्या हुआ, न आदम रहे, न नूह रहे, न इब्राहिम रहे, न मूसा रहे, न हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रहे। सब नबी भी गुजर गए। हमारे गिनानों में इस किस्म के बहुत से दाखले दलीलें हैं। बड़े बड़े राजे बादशाह, रावण जैसा छत्रपति राजा बर्बाद हो गया, नाम नहीं निशान नहीं। उसके 1,00,000 पुत्र, 1,25,000 नाती। 1,00,000 पुत्र उसके, रावण के 1,00,000 पुत्र, यानी पुत्र का मतलब बेटे और पोतरे, ये सब पुत्र में आते हैं, और 1,25,000 उसके सगे कुटुंबी। तीसरे रावण घर दीवड़ा नबाती। आज उसके घर में, उसकी फैमिली में कोई रहा नहीं कि दीवड़ा बाती जला सके। कहां चले गए? मैं 40 बरस दारुसलाम में रहा, कभी कभी बैठ के सोचता हूं कि जमात खाने के इर्द गिर्द, इंडिया स्ट्रीट, जमात स्ट्रीट, मॉस्क स्ट्रीट, मार्केट स्ट्रीट, मोरगोरो स्ट्रीट, इधर के उधर के बड़ी बड़ी पेड़ियों से भरे हुए थे। पर कौम की भी थी, लेकिन मेजॉरिटी इस्माइलियों की पेड़ियां थी। कहां गए? 40 बरस के अंदर कितना हेर फेर हो गया। यही डोडोमा, ये जब जमात खाना बना 53-54 के अंदर, हजरत इमाम शहजादे के तौर पे अपने भाई प्रिंस तमीन के साथ इसी जमात खाने की ओपनिंग की और ऊपर गए टावर के ऊपर। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब भेजा तो ये आखा डोडोमा इस्माइलियों का था। आज वो पेड़ियां किधर गई? बड़े बड़े राजे महाराजे खत्म हो गए। मेरी 68 बरस की जिंदगी में मुझे लगभग 3 बरस की उम्र से चीजें याद हैं। मैं उस जमाने की, आज से 65 बरस की मैं बातें कभी सोचता हूं तो दिल के अंदर ऐसा ख्याल पैदा होता है कि ये दुनिया कड़वी है। रियली दुनिया कड़वी है। इंसान का जो जीवन है समझदार के लिए, वो आदमी के जो रूहानियत को जानता है, वो आदमी जिसको खुदा की लगनी लगती है, जो आदमी धर्म को समझता है, मोमिनों उसके लिए ये दुनिया कड़वी है। मीठी किसको लगती है? बदमाश को, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, जिसके काम अच्छे नहीं, जो गुनाहों में फंसा हुआ है, उसकी अंतकरण की आंखें अंधी हो जाती हैं, इसलिए उसको कुछ सूझता नहीं, उसके लिए तो दुनिया बहुत मीठी लगती है। और दुनिया उसको भी मीठी लगती है कि जो दुनिया से प्रेम करता है। मोह ममता माया ऐश आराम मोटर गाड़ी बंगले खाना पीना ناچ رنگ انسان کی یہ موت شوق کی زندگی کے اندر آدمی جب پڑتا ہے تو اس آدمی کے دل کے جو آنکھیں ہیں اندھی ہو جاتی ہیں, اس کے دل میں کچھ بھی روشنی نہیں ہوتی, اندھیرا ہوتا ہے. یہ بات اس کے لیے ہے کہ دل میں دیول پوجی ہیں. تمہارا جماعت خانہ, تمہارا مندر, تمہاری مسجد خود تمہارا دل ہے. بھیجی من میرا مسلح. مسلح کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ چٹائی کے جس کے اوپر بیٹھ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. مسلمان ہمارے بھائی, ہم بھی, ہمارے تو گھر میں اس قسم کے مسلح ہے نہیں, کیونکہ ہمارا مذہب صوفی مذہب ہے. ہمارا تاریخہ اسماعیلی تاریخہ باطونی تاریخہ ہے. ہم تو کرسی پر بیٹھ کے بھی دعا پڑھ لیتے ہیں, چلتے چلتے پڑھ لیتے ہیں, بائسیکل کے اوپر سائیکل چلاتے چلاتے پڑھ لیتے ہیں, موٹر چلاتے چلاتے پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ مصلی پہ نہ بیٹھے, وضو کرے یا غسل کرے. تو پھر شمس کہتے ہیں میرا من ہے نا, یہ میرا مصلی ہے. اور نماز کون پڑھاوے؟ قاضی پڑھاوے. تو قاضی کون؟ کہ اللہ میرا قاضی. اے جی من میرا مصلی, اللہ میرا قاضی. کایا ہماری مسیتا حبی اللہ. میرا جو بدن ہے یہ مسجد ہے, میرا من مصلی ہے, اور قاضی میرا اللہ ہے. اندر بیٹھا میں نماز گزاروں, مورکھ کیا جانے تائت ہماری حبی اللہ. مومن کے دل میں خدا بستا ہے ہر وقت, اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی حاضری ہے. مولا مرتضیٰ مشکل کشا کہتے ہیں مومن کا جو دل ہے وہ خدا کا تخت ہے, خدا کا عرش ہے. مومن ہر وقت خدا کے نزدیک ہے, مومن ہر وقت خدا کو حاضر جانتا ہے. مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے وہ کبھی بھی برا کام نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا. مومن کے ہاتھ سے کبھی خرابی نہیں ہوتی, مومن کے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا. اور کبھی مومن نے کسی کو دکھ اجانے حساب میں دے بھی دیا تو مومن جلدی سے اس چیز کو سمجھ جاتا ہے اور اس سے وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں, تجھے میرے سے دکھ ہوا. انسان اس دنیا کے اندر جب دنیا داری میں پڑ جاتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے دینداروں کہ ہماری جتنے بھی دکھ ہیں دنیا میں ان تمام دکھوں میں ہمارا ہاتھ ہے. ہر ایک دکھ کے اندر انسان خود جوخمدار ہے, پھر بھی انسان سمجھتا نہیں کہ میں برائی کے اوپر برائی کرتے چلے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں, مطلب کہ تم خود جوخمدار ہو اس دکھ کے. کبھی کبھی میں چھوٹے چھوٹے دلیل داخلے اپنی آوازوں میں دیتا ہوں اس لیے کہ لوگ سمجھ سکیں. آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی ہم بولتے بولتے اپنی جیب کو کاٹ لیتے ہیں, ہمارے دانتوں سے خود ہماری جیب کٹ جاتی ہے, لوہی نکلتا ہے, دکھ ہوتا ہے. تو اس وقت یاد کرو خدا کو اور کہو یا مولا تیرا شکر گزار ہوں کہ یہ جو دکھ ملا یہ بھی میرے کوئی گناہ کی وجہ سے ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی دکھ آوے تو شکر کرو کہ خدا تعالیٰ نے تیرا کوئی گناہ بخش دیا, کوئی بڑے گناہ کو چھوٹے دکھ میں قبول کر لیا. لون سو انیارے سنساریا ماں ہے جی. اس دنیا میں اپنے अपनी इस जिंदगी में जो कुछ भी काम करोगे उसी का फल तुमको मिलेगा। ए वन बाबिया चने लूणिया तिर कहते मुझने देखा रोजी प्राणी रा तू मकरी समरोड़ा अमरोड़। तू गड़बड़ मत कर, दलीले मत कर, होपनी मत कर। एनी वाटणिए वरावया लाख करोड़ प्राणी रा तू मकरी समरोड़ा अमरोड़। लाखों करोड़ निकल गए, तू क्या चीज है? छोटा था, 8-1 बरस की मेरी उम्र। आज भी ये जो आखरा मैं आपको बयान करता हूं, बहुत बरस पहले मैंने किसी वाज में जिक्र किया है, लेकिन आज मुझे याद आया कि इंसान इस दुनिया में जब कुछ काम बुरे करता है तो उस वक्त उसको सूझता नहीं, नादानी में भी करता है और दानी से भी करता है, जानबूझ के भी करता है। अजाने गुनाह बहुत से बख्शे जाते हैं, लेकिन जानबूझ के किए हुए गुनाह नहीं बख्शे जाते। हम स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, तो हमने बच्चों की एक छोटी सी टोली बनाई हुई थी। हमारा एक लीडर था, उसका नाम था हमीद। मैं ये बात करता हूं अमृतसर की, मेरा जन्म अमृतसर का है, वहीं मैंने मैट्रिक तक की तालीम की, फिर मैं लाहौर अलीगढ़ बॉम्बे चला गया। तो ये जो हमीद था वो हमारी 8 बच्चों की टोली में सबसे ताकत वाला था। कई वर्षों तक हमारे साथ रहे। 10-12 साल का हुआ, बदन इसका बहुत मजबूत था, और इस ताकत के कारण से बहुत से दूसरे बच्चों को ये जानबूझ के मारा करे। खामखा किसी का सिर रगड़ दिया, किसी को ठोंसा मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी की कमीज फाड़ डाली। मैं इसको बोलू, हमीद उसने तुझे कुछ कहा नहीं और तू खामखा इसको कर रहा है। इंसान की आदत है, मालदार आदमी होता है वो किसी की परवाह नहीं करता, ताकत वाला होता है कमजोरों को मारता है, मालदार होता है गरीबों पे जुल्म करता है, लागवग वाला होता है तो वो अभिमान के अंदर रहता है। औरत को भी कभी खूबसूरती मिल जाती है तो वो भी इतनी ऐंठती है, समझती है कि सारी दुनिया की हूरे मेरे से काली हैं। किसी आदमी को एजुकेशन मिल जाती है तो उसको मगरूरी होती है, कभी आदमी कुछ मशहूर हो जाता है तो उसको मगरूरी आ जाती है। हजारों तरीके से इंसान को, किसी को सत्ता का मत पड़ता है, किसी को इलम का, किसी को एजुकेशन का, किसी को पैसे का। मोस्टली लोग सत्ता और पैसे वाले ज्यादा मगरूर होते हैं। मैंने आखिर इस छोकरे की दोस्ती छोड़ दी, और छोड़ देने का कारण मेरा जमात खाना, क्योंकि शाम के वक्त कुछ भी कीमत के ऊपर मुझे जमात खाने जाना है। आखिर फिर कभी कभी मिला करते थे। 1963 के अंदर 1963 में मैं कुछ 24 बरस के बाद अमृतसर गया, अपनी जन्मभूमि देखी, लाहौर गया। उस जमाने के अंदर यह हमीद लाहौर रहता था। इसका एड्रेस था, पूछते पूछते हम 2-1 लड़के साथ थे, इसके घर गया, दरवाजा ठोका, अंदर से एक औरत निकली। मैंने कहा ये हमीद का घर है? कहती है जी हाँ। उसको कहो कि अबू आया है। उसने अंदर मेरी आवाज सुनी और रोने लगा, ये भी रो पड़ी। मुझे बोली भाईजान आओ। मैं अंदर गया तो खटले पे पड़ा था, उसका आधा बदन पैरालाइज हो गया, पांव भी हाथ भी, मुंह भी टेढ़ा हो गया, गले लग के इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मुझे चुप कराना मुश्किल हो गया, और उसके रोने की वजह से मेरी भी आंखें भर आई। मुझे कहता है अबू तेरे को याद है मैं ये पांव से धक्के मारा करता था? हाँ। आज ये पांव मैं चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तुझे याद है मैं ये हाथ से लड़कों को मारा करता था? आज मैं ये हाथ से खा नहीं सकता, बहुत रोए। जो जिस पांव से मारा करता था वो पांव खोटा हो गया, जिस हाथ से मारा करता था वो हाथ नकम्मा हो गया, जिस मुंह से चिढ़ाया करता था वो मुंह भी बदसूरत हो गया, एक कान बहरा हो गया। क्या है इंसान, 10 इंच का सांप काटे तो आदमी मर जाता है, एक छोटा सा मच्छर काटे तो ताक के अंदर जूझता है। आदमी की औकात कितनी, आदमी के अंदर ताकत क्या है, एक घोड़े और गधे जितनी भी ताकत नहीं इंसान के अंदर। चलते चलते इंसान गिर जाते हैं, गुजर जाते हैं। एक दफा चौपाटी, उधर जगह है बॉम्बे के अंदर, चौपाटी से थोड़ा पहले एक पुल आता है जिसके नीचे से ट्रेन निकलती है। शाम का वक्त था, मैं चौपाटी की तरफ जा रहा था, बाद में पता लगा कि उसका पेट भी बड़ा था, तो जरूर एक बच्चा पेट में था और 5-1 बच्चे उसके साथ हाथ पकड़े हुए, 1.5 बरस 2 बरस से लेके ऐसा बड़े कुछ 4-5 बच्चे होंगे। और ये बच्चे थे, तूफान करते थे। इसने गोद का बच्चा नीचे जमीन पे रखा, चंपल निकाल के जो सबसे बड़ा लड़का था उसको खूब पीटा, 2-3 को और पीटा, मुआ पिटिया, जन्मते ही मर गए होते तो अच्छा होता। मैं तो पसार हो गया, लेकिन ख्याल मेरा उधर रह गया उस भाई की तरफ पीछे। मैं सोचता चला जाता था कि आह, कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो औलाद के लिए अजदियां करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मिन्नतें मानते हैं, दवाइयां करते हैं, खुदा के पास रुदन करते हैं कि तू हमें औलाद दे। और आज एक माँ के मुंह से अपनी औलाद के लिए यह निकले कि तू जन्मते मर गया होता तो अच्छा था। तो सुख किधर है, औलाद में सुख है कि औलाद न होवे तो सुख है? गरीबों को देखता हूं तो वो मालदारों को हसद की नजर से देखते हैं, ये समझते हैं कि मालदार बहुत सुखी हैं। और हम लोगों के अंदर भी, हमारी आपस की भाषा के अंदर भी, कोई आदमी पैसे वाला होवे, उसके पास अच्छी गाड़ियां होवे, अच्छे मकान होवे, तो हम समझते हैं बहुत सुखी है। नहीं दीनदारों, न सुख औलाद में है, न सुख बे औलादी में है, न सुख माल में है, न सुख गरीबी में है, न बड़ाई में सुख है, न नीचे रहने में सुख है। तो सुख क्या है? सुख तो इंसान के अंदर से उत्पन्न होता है, सुख तो अंदर से निकलता है। और सुख उसको कहते हैं कि जिसको खुदा की मोहब्बत होवे, जो खुदा से डरता होवे, जो किसी का बुरा नहीं करता। जिस हाथ से हमने किसी का बुरा किया यही हाथ हमको दुखी करेगा, जिस आंख से हमने बदनजरी की किसी के माल या किसी की और चीज के ऊपर, तो ये आंख भी हमको दुख देगी। अल्लाह ताला ने एक दफा रसूल अकरम को फरमान भेजा, वो हदीसें कि जो कुरान में नहीं लेकिन नबी ने कहा कि मुझे खुदा ने ऐसा फरमाया है, इन हदीसों को हदीस कुदसिया कहते हैं। तो ये हदीस कुदसिया है, नबी फरमाया मुझे अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद, जब मेरा बंदा कोई मुझको याद करता है मैं उसको याद करता हूँ, जब वो मुझसे प्यार करता है मैं उसको प्यार करता हूँ, जब मैं उस बंदे से प्यार करता हूँ तो वो मेरी आंखों से देखता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, वो मेरे कानों से सुनता है क्योंकि मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसकी जीभ बन जाता हूँ, वो मेरी जबान से बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मेरे हाथों से काम करता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ, वो मेरे पांव के ऊपर चलता है। यानी खुदा और वो बंदा एक हो जाते हैं। कभी हम इसी चीज को उलट देवे तो, यानी वो आदमी खुदा से प्यार नहीं करता, शैतान से प्यार करता है, तो उसकी आंखों में शैतान बैठ जाता है, वो शैतान की आंखों से देखता है, शैतान के कानों से सुनता है, शैतान की भाषा बोलता है, शैतान के हाथ से काम करता है, शैतान के हाथ के पांव से ऊपर चलता है। जिस तरह एक खुदा का बंदा खुदा के साथ एक हो जाता है, इसी तरह से एक शैतान का बंदा शैतान के साथ एक हो जाता है। हजरत मौलाना दानी सलामत सुल्तान महमूद शाह फरमाया, भाइयों में भाई शैतान है, भाइयों में भाई शैतान है। शैतान कोई कोई व्यक्ति का नाम नहीं। अजाजील को शैतान कहा गया, लेकिन वो अजाजील शैतान शैतानियत जो है, जिस तरह खुदा ताला एक फोर्स है, एनर्जी है, इसी तरह से उसकी ऑपोजिट एनर्जी को हम शैतान कहते हैं। वो चीज के जो खुदा के विरुद्ध है, वो चीज जो खुदा के हुक्म के विरुद्ध है, वो चीज जो हमको खुदा से दूर ले जावे, वो हर चीज शैतान है। अगर शाम के वक्त दुकान बंद करके घर गए हो और वीडियो खोल के बैठ गए हो और जमात खाने नहीं आते, तो दीनदारों माफ करना, उस वक्त आप शैतान बन गए हो, क्योंकि आपने शैतान से दोस्ती कर ली और मौला का घर छोड़ दिया, वो भूल गए। बहाना क्या है? थक गए हैं। हाँ, शैतान जल्दी थका देता है, खुदा के बंदे थकते नहीं। मोमिनों, क्या आपको बातें सुनाऊं, क्या जमाने बदल गए हैं। पाकिस्तान में एक गांव का नाम है सियालकोट। एक जमाने में सियालकोट के अंदर सबसे बड़ी पाकिस्तानी पंजाब की जमात रहती थी। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब का एरिया है उसमें सियालकोट बड़ा अच्छा गांव है, और सियालकोट से 26 माइल के ऊपर जम्मू है जो कश्मीर के अंदर आता है, और ये दो शहरों के बीच में लगभग 14 माइल इधर से, 12 माइल उधर से, तो ये बॉर्डर है कश्मीर और पाकिस्तान का। सियालकोट में कुछ 50 बरस पहले की बात करता हूं, जूना जमात खाना था, मगर वो जूना जमात खाना उस जगह था कि जो गांव के अपोजिट जगह थी। सियालकोट के शहर के अंदर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है एक। इसका पानी कश्मीर की पहाड़ों से आता है। सख्त गर्मी का जून जुलाई का महीना होवे तो ये जो एक है इसमें कभी आप पांव डालोगे तो पांव एकदम सुन्न हो जाएगा, इतना ठंडा पानी है, बर्फ का पानी। 12 महीने ये नदी चलती है, और सख्त गर्मी के अंदर भी इसका पानी सहन ना हो सके, इतना ठंडा होता है। लेकिन सर्दियों में इतना जरूर होता है कि पानी घट जाता है, मगर रहता है। जमात खाना उसके ऑपोजिट साइड में था, जमात इस तरफ रहती थी। सुबह 3 बजे लोग उठे, एक में जावे। इस ठंडे वक्त में, ठंडी होवे गर्मी होवे, लेकिन नदी पार करके जावे। जब गर्मी का सीजन आवे तो कमर तक पानी हो जाए। परोड़िए 3 बजे औरतें, मर्द, बूढ़े, जवान, उस जमाने के अंदर जवान कम थे बैतुल ख्याल में, लेकिन ये लोग कमर तक के पानी में हर रोज, एक दिन बरस में नहीं, हर रोज 365 दिन परोड़िए 3 बजे ये नदी पार करके उस तरफ जावे। तारा रानी का गिनान याद आता है कि जो हर रोज रात को 12 बजे जमुना नदी पार करके जमात खाने जाया करती थी घोड़े के ऊपर, वो तो पुरानी बात थी, हजारों साल पहले की बात थी, लेकिन ये तो आंखों से देखी हुई बात है और उनके साथ एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि वो इतनी दुख उठा के भी जमात खाने जाते थे और खुशी समझते थे। और आज हम शाम के वक्त जमात खाने नहीं आ सकते इसलिए कि हमें दुनिया के काम है। जब आंख बंद हो जाएगी तो फिर दुनिया के काम कौन करेगा? सब कुछ पीछे रह जाएगा, बैंक बैलेंस भी रह जाएगा, मोटर भी रह जाएगी, बंगले भी रह जाएंगे। इधर ही देख लो, तंजानिया के अंदर 75% टांगानिका इस्माइलियों ने बसाया हुआ और इस्माइलियों ने इसको बांधा हुआ है। इधर की तमाम जितने भी मकान है, पक्के मकान, 75% मकान इस्माइलियों ने बनाए हुए टांगानिका के अंदर, जंगलों जंगलों के अंदर पांव से जाके उन्होंने दुकानें खोली हुई है। सगा निकाह के अंदर 125 से 150 बरस की हमारी जमात है, 150 बरस रहने के बाद भी ये सब हमारे मकान हमारे ना रहे। एक रात को उठे और सुबह पेपर में देखा तो सबके मकान उसकी मिल्कत में से छूट लिए गए, आंखों के सामने रहे लेकिन अपने ना रहे, मकान के अंदर रहते हैं लेकिन अपनी मिल्कत खत्म हो गई। हमारी हयाती के अंदर ये चीज टांगा निकाह में बन गई। इसमें एक लेसन लेने की बात है कि जो मकान हमने बनाए हमारी नजर के सामने वो मकान चले गए और हम कुछ कर सके, कुछ ना कर सके। कई लोग अंदर रहते हैं, उसके बनाए हुए मकान में वो रहते हैं लेकिन भाड़ा भरते हैं, बनाया उसने। दुनिया में जब ये उथल पाथल आते हैं तो इंसान की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इस छोटी सी जिंदगी के लिए कि जिस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, माँ के पेट से मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है 2-4 दिन के बाद मर जाता है, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है धारण लेता है थोड़ा बड़ा होता है 6-12 महीने में मर जाता है, कोई 5 बरस में मरता है, कोई 20 बरस में मर जाता है, कोई 40 बरस में मर, 100 बरस में, लेकिन मर जाता है। दुनिया में कोई हमेशा रहता नहीं। हमारे 39 इमाम इस दुनिया के अंदर आए और ये शरीर छोड़ के चले गए। आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का दीदार किया हुआ है, लेकिन आज इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की बॉडी आसमान के अंदर दफन है। इमामों और नबियों के साथ भी वही बात बनी हुई है। 1,24,000 नबी इस दुनिया के अंदर आए, वो सब जमीन में दफन हो गए। लाखों राजा बादशाह आए, सब दफन हो गए। हमारे खुद के बाप दादा अपने हाथों से हम दफन करके आए, तो मुझे बताओ कि हम रहेंगे? मैंने अपनी माँ को दफन किया, अपने बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, मेरे बच्चे मुझे दफन कराएंगे, उनके बच्चे उनको दफन कराएंगे, रहने वाला है कोई? तो इस छोटी लाइफ के लिए, थोड़ी जिंदगी के लिए जो हमेशा रहने वाली नहीं और हमें कुछ पता नहीं है दीनदारों कि आज के बाद क्या होने वाला है, फिर ये लड़ाई झगड़े, ये हूंपनी, ये मगरूरी, ये अभिमान, ये जबान की खराब भाषा, ये तोछड़ापन, ये सब किसके लिए, किसके लिए? इंसान अनाज खाता है, खुदा ने उसको रिजक दिया, खुदा ने रोजी दी, तंदुरुस्ती दी, खुदा ने उसको 2 पैसे दिए, खुदा ने उसको इज्जत आबरू दी, उसको औलाद दी। अरे सुबह से शाम तक पल पल उसका शुक्राना अदा करो कि या मौला तेरी रहमत हुई है, तेरी बड़ी रहमत है, याली तेरी बड़ी रहमत है, मेरे गुना बेहिसाब है मौला, मेरे गुना बख्श दे। और कभी दुख आ गया तो कह दो या मौला मेरा जरूर कुछ गुना था जिसकी वजह से ये दुख आया, लेकिन तेरा शुक्र गुजार हूं कि तूने इससे ज्यादा मुझे दुखी नहीं किया। दरअसलम के अंदर 25-30 बरस पहले की बात करूं, जूना पोस्ट ऑफिस था, ये नवी पोस्ट ऑफिस जो अभी बनी है ये नहीं थी, जूनी पोस्ट ऑफिस। और उस पोस्ट ऑफिस के एक साइड के ऊपर पोस्ट बॉक्सेस थे। एक दिन सुबह के वक्त जमात खाने से निकल के मैं अपना बॉक्स खोलने के लिए गया, उस वक्त दारुसलाम के अंदर एक अफ्रीकन भिखारी था, ठिंगना था, शरीर उसका इतना मोटा नहीं था लेकिन उसका जो सिर था ना नॉर्मल सिर से 3 गुना बड़ा था, लेकिन ये सिर एक साइड से ऐसा ऊंचा बड़ा और दूसरी साइड से छोटा, राउंड फेस नहीं था, उसकी आधी साइड बहुत बड़ी थी और आधी साइज छोटी थी, भयानक लगता था। मैं अंदर से कागज पोस्ट निकाल के, मेरी आदत नहीं लेकिन मालूम नहीं उस दिन मुझे कुछ खुदा ने लेसन देना था, मैं गाड़ी में बैठे हुए मैंने एक खत खोला और खत खोल के पढ़ने लगा तो मेरी नजर उस भिखारी के ऊपर जो पोस्ट ऑफिस की सीढ़ियों के ऊपर बैठा था उसके ऊपर नजर पड़ी, सिर से लेके पांव तक एक ध्रुजारी आ गई मुझे। मैंने कहा या मौला अगर तू चाहता तो ऐसा मेरा हाल होता لیکن تو نے مجھے سب کچھ دیا، میں رو پڑا، خدا کی شکر گزاری کے اندر رو پڑا کہ مجھے اس نے ایسا نہیں بنایا، میرے پاس موٹر ہے، بنگلہ ہے، تندرستی ہے، تیری رحمت ہے، اگر خدا چاہتا تو ایسا بنا دیتا، اگر خدا چاہتا تو ہم کو رگڑ ڈالتا۔ آپ کو یاد ہے ہیلی سیلاسی، ایتھیوپیا کا شہنشاہ، ادھر دارالسلام آیا، کیا اس کی جاہو جلالی، کیا دبدبا، یہ ہیلی سیلاسی نے، جو ایک آرڈینری ملٹری مین تھا، آرڈینری مین، شاہی کٹمب کا نہیں تھا لیکن ملٹری کے اندر تھا، رینکس چڑھتی گئی اس کی، بڑھتا گیا، اور اس نے اس وقت جو رانی تھی ایتھیوپیا کی، اس کی لڑکی سے شادی کی، اور اس رانی کو مروا کے اس نے تخت کے اوپر قبضہ کیا، کافی ظلم کیا اس نے۔ اس کا ایک دفعہ راج پاٹ ترک اٹلی نے چھین لیا، 1936 کے اندر اٹلی نے حملہ کر کے اس کو بھگا دیا، اور یہ لندن کے اندر بوٹوں کی دکان کھول کے بیپار کرتا تھا، شہنشاہ، ہیلی سیلاسی کی بات کرتا ہوں۔ لیکن دوسری لڑائی کے اندر برٹش نے جب فتح پائی جرمنی اور اٹلی کے اوپر، تو اس راجا کو انہوں نے واپس رکھا۔ جب ہی اچھل پاتھل ہوئی تنزانیا سے جانے کے بعد، وہاں ریولوشن ہوئی، ہیلی سیلاسی کو تخت سے اٹھایا گیا، مٹی کے ایک جھمبے کے اندر اس کو رکھا، اور ایک کتا اس کے ساتھ رکھا، فرش کے اوپر کچھ نہیں، چٹائی نہیں، بیڈ نہیں، کارپیٹ نہیں، کچھ نہیں، زمین کے دھوڑ کے اوپر سوتا تھا، اور جب اس کو کھانا دیتے تھے تو کتے کے ساتھ اس کو ایک پلیٹ میں کھلاتے تھے۔ کتنا خدا نے اس کو ذلیل کیا، شہنشاہ، محلوں میں رہنے والا، اور آج وہ دھوڑ کے اوپر سوتا ہے اور کتے کی کھائی ہوئی پلیٹ میں وہ کھانا کھاوے، جیل میں ہی مر گیا۔ ہٹلر کدھر گیا، مسولونی کدھر گیا، ایدی امین کدھر گیا، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ستا تھی، سب چھن بن ہو گیا، ہم رہیں گے، ہمیں کیا پتا۔ تو دین دارو، یہ ہماری حالت ہے، خدا سے بہت ڈرو، ہم اسماعیلی مذہب والے خدا سے ڈرنے والے ہیں، خدا کا نور ہمارے اندر ہے، ہمارے ہاں آ کے بیٹھتا ہے، دنیا بھر میں ہمارے جیسی کوئی قوم نہیں کہ جس کے اندر حاضر موجود دھنی بیٹھا ہوئے، اللہ کا نور امام زمان ہمارے اندر آ کے بیٹھتا ہے، ادھر آ کے بیٹھتا ہے، دعا آسیس دیتا ہے، اس میں کتنی حلیمی ہے۔ حضرت امام ہم کو کبھی پاؤں کے ساتھ مارے نہ بوٹ پہن کے، تو ہم راضی ہوئے کہ مولا نے مجھے مارا۔ خداوند عالمین حضرت امام کی جو ستا ہمارے اوپر ہے، وہ خدائی طاقت کی ستا ہے، لیکن آپ نے کبھی حضرت امام کو دیکھا، اس میں کتنی حلیمی ہے، کتنی نرماس ہے، مولا نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کو تو چھڑائی سے یوز نہیں کیا، مولا میں روڈنس نہیں، تو چھڑائی نہیں۔ اوپر آپ کی بنگلی ہے نا، 66 کی سال میں مولا اوپر آئے تھے، دیدار اوپر تھا، نیچے بھی تھا، اوپر بھی تھا، ارد گرد کے بہت سے لوگ ادھر آئے تھے، مہمانیوں کا کام جاری تھا، مولانا حضر ایمان کو چین پہنانے کے لیے یہی ڈوڈوما کی ایک ڈوسی کھڑی ہوئی، یعنی وہ چلی آتی تھی لائن کے اندر مہمانی کے طور پہ۔ ابھی وہ کیا ہے بھائی، ایسی تھی کہ چین اس کا ہاتھ میں تھا تو وہ ایسا ایسا گھماتی رہی تھی، چلتے چلتے مولا کے پاس آ کے سیدھی ہوئی۔ اب اس نے چین کو کھولنا چاہا کہ مولا کے گلے میں ڈالے، مگر چین میں گانٹھیں پڑ گئیں، اس کو ایسا پھرا رہی تھی نا۔ ادھر ڈوڈوما کی بات کرتا ہوں، میری آنکھ سے دیکھی ہوئی بات۔ مولانا حضرت امام آرام سے بیٹھ گئے، بھائی بیچاری کھولتی رہی صاحب کے سامنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بہت بڑے ویکتیاں ہوتی ہیں ان کا پربھاؤ بھی ہوتا ہے، और ये धनी दीन दुनिया का बादशाह, इसका तो प्रभाव बहुत बड़ा है, बड़े बड़ों की जबान बंद हो जाती है। तो मौला के सामने खड़े खड़े वो जल्दी करना चाहती थी, बेटा कहता है अम्मा जल्दी करो, मुखी बोलते हैं जल्दी करो, घबरा गई, गांठें न खुली। हजर इमाम मुस्कुरा रहे थे, मुखी ने हाथ से लेके भाई के हाथ से तो खोलने की कोशिश की, लेकिन मुखी न खोल सके। मौला के साथ काउंट वीएम नजर अली थे, तो वीएम नजर अली पास खड़े थे, तो उसने ट्राई की, वो न खोल सके, और हजर इमाम मुस्कुरावे। पांच छह मिनट निकल गए, और पांच छह मिनट बड़ी चीज है। मौला शांति से बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चार पांच आदमियों ने, ऑफिसरों ने कोशिश की गांठ खोलने की, गांठ न खुले। आखिर हजर इमाम ने ले लिया हाथ में, माँ बाप फरमाया हैव पेशेंस, धीरज रखो, क्योंकि जल्दी जल्दी करने जाते हैं ना। मौला ने हाथ में लिया और ऐसा करके जो ऐसा किया तो वो खुल गया। मौला ने उसको दिया डोसी को, गर्दन मुबारक नीचे कर दी, उसने मौला को चैन पहनाया, बहुत मौला उसके ऊपर राजी दिए। अब वो इतनी देर उसके सामने खड़ी रही, मौला का दीदार नूरी असर उसके ऊपर पड़ता रहा इतनी देर, उसमें भी कुछ भेद था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, अगर कोई दुनिया का राजा बादशाह होता तो गुस्से हो जाता, इतनी देरी कर दी। लेकिन मौला की धीरज देखो, मौला को कभी मिलने जाते हैं, मौला इतने प्रेम से मिलता है, इतनी मोहब्बत करता है, ऐसा ध्यान रखता है कि बात छोड़ दो, सगा बाप भी शायद न करे। अब मौला को देखो कितना साहब हम्बल है दुनिया भाने, मौला में कितनी धीरज है, कितनी टॉलरेंस है, कितना शांत है, रूढ़ तो नहीं, अभिमानी भी नहीं, हालांकि वो अभिमान कर सकता है। इमाम जमान का कैरेक्टर देखो, और एक हम हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। अभी अभी कितने दाखले दिए हैं, तो दीनदारो हमारा इस्माइली जो दीन है, ये नबियों का मजहब है, इमाम जमान हमारे अंदर बैठा है। नरमास रखो, हलीम बनो, नरम बनो और नम्र बनो, हम्बल बनो, भाषा को कंट्रोल करो, प्रेम की भाषा बोलो, सॉफ्टनेस अख्तियार करो, अपने आप को नीचा समझो, ऊंचा मत समझो, प्रेम भाव ना रखो। तो छड़ाई इस्माइली मजहब वालों के लिए नहीं, देखो हमारे पीरों ने हमें कैसे कैसे मीठे गिनान सुनाए। एक गिनान कहा है कि तुम मीठी भाषा बोलो, ए जीरे वीरा मिठड़ो आई बोलो। पीरों के कलाम कभी आप पढ़ो तो पीरों ने हमको जी करके बुलाया है, जी इंग्लिश में कहते हैं सर को, जो बड़ा बुजुर्ग होवे छोटे लोग उसको जी कहते हैं। आप कभी इंडिया जाओ तो इंडिया के जो लोग हैं वो बुजुर्गों के नाम के साथ जी लगाते हैं, भाई जी, पापा जी, मामा जी, काका जी। जी का मतलब वडील, जी का मतलब सर, हमको पीरों ने ए जी जी करके हमको बुलाया है। हालांकि पीर हमारे मावित्र हैं, लेकिन उन्होंने हमको बढ़ाई दी है, जी रे वीरा मेरे भाई जी, जी रे भाई जी। इस तरह से हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर हमको कितना सिखाया है। हम रोज गिनान सुनते हैं, लेकिन हमको कभी ये ख्याल आया, मौलाना हजर इमाम जैसी व्यक्ति हमारा मालिक है, दीन का, दुनिया का, आल औलाद, जान माल सब कुछ उसके पांव में हमने अर्पण कर दी है। लेकिन जब भी आप देखो जमातों के अंदर, जब भी मौला को हम कोई भेंट देते हैं उसके बच्चों के लिए या बेगम साहबा के लिए, तो मौला बापा खड़े होकर जमात को कहता है, मैं बहुत तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ, मैं तुम्हारा थैंक्स मानता हूँ। अरे मौला तू हमारा ग्रेटफुल बने, लेकिन देखो सिखाने के लिए इमाम जमान में कितनी नम्रताई है कि इतना बड़ा दीन दुनिया का बादशाह भी हमको कहता है, मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे ऐसी ऐसी चीजें दी, تم نے مجھے سپوائل کر دیا, تم نے مجھے لاڈ لڈایا. ایسے ایسے شبد سن کے بھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ میرے اندر بھی حلیمی اور نمرتا ہی آوے. جیرے ویرا مٹھڑو آئی بولو کہ ویرا نمی کھمی ہو یار چالو, کہ ویرا نمی کھمی ہو یار چالو, مت چھوڑیو ست دھرم سونے ایڑو, جیو جی کچھی کے اندر کہتے ہیں جیبو, گجراتی میں کہہ دیا ہو جیو ہو جی. کتنے نمرتائی والے شبد ہیں پیروں کے کنانوں میں. خدا اے جی اے صاحب, خدا تم کو لمبی زندگی دے وے. جی رے ویرا ہو جی ہو جی, کتنے عزت والے شبد ہیں. اور ہماری زبان کے اندر کڑواس افین لمڑا اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے, ہماری بھاشا بھی گندی اور خراب ہوتی ہے. نیاز پینے والے کے منہ سے امرت وانی نکلنی چاہیے, لیکن ہم یار و دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گندی اور بھونڈے مذاق کرتے ہیں, گندی بھونڈی گالیاں نکالتے ہیں, کس کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں تو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. ارے بھائی, اس کی ماں تمہاری ماں نہیں, اس کی بہن تمہاری بہن نہیں. مذہب ہم کو نمرتا ہی دیتا ہے, نمر کے ساتھ ساتھ انسانیت دیتا ہے. مذہب کے اوپر چلنے سے ہمارے اندر گن پیدا ہوتے ہیں, مذہب کے اوپر چلنے سے ہمارے انتکرن کی آنکھیں کھلتی ہیں, مذہب کے اوپر عمل کرنے سے ہم خدا کے نزدیک ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے خدا کے نزدیک آتے ہیں ہمارے اندر بھی خدا کے گن پیدا ہوتے ہیں. خدا ظالم نہیں, مومن بھی ظالم نہیں. خدا رحیم ہے, مومن بھی رحیم ہے. خدا کریم ہے, کریم کہتے ہیں جنرس کو, سخی کو, تو مومن بھی سخی ہوتا ہے. خدا کے اندر حلیمی ہے, نرماس ہے, مومن بھی حلیم ہے. خدا رب ہے, مومن بھی رب ہے. رب کا مطلب پالنے والا, پوسنے والا. اور مومن بھی جو ہوتا ہے تو وہ اپنی روزی کمائی کے اندر اس کے نیچے جو غریب لوگ ہیں ان کو پالتا پوستا ہے, ان کو بھی کھانے پینے میں مدد کرتا ہے. یہ رب کی نشانی ہے. رسول اللہ کی حدیثوں میں ماں کو چھوٹا رب کہا گیا, کیونکہ جو ماں ہے وہ بچے کو پلاتی ہے, کھلاتی ہے, پالتی ہے, پوستی ہے. پالنا پوسنا یہ رب کا کام ہے. تو ہری کے جو گن ہیں, خدا کے جو گن ہیں, خدا کے جی اندر جو صفتیں ہیں وہ مومن کے اندر, البتہ لوئر لیول میں, لیکن مومن کے اندر بھی خدا جیسی عادتیں آ جاتی ہیں. خدا بھونڈی بول نہیں بولتا, مومن بھی بھونڈی باتیں نہیں بولتا. خدا گندے کام نہیں کرتا, مومن بھی گندے کام نہیں کرتا. خدا پوتر پاک ہے تو مومن بھی پوتر پاک بننے کی کوشش کرتا ہے اور بنتا جاتا ہے. اس کے وچار اچھے ہو جاتے ہیں. دل مائیں دیول پوجیے, اپنے دل کے اندر اس مولا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھو. مولا علی کا ایک بہت اچھا ہم کو ایک نصیحت کا پاٹھ ہے. دیندارو, آپ کسی پرفیوم بیچنے والے کی دکان پہ جاؤ تو آپ کو پرفیوم نہیں لگاؤ گے تو بھی آجو باجو کے واتاورن میں پرفیوم پھیلی ہوئی ہے. جب ہم ادھر اگربتی کے لوبان دکھاتے ہیں تو سارے جماعت خانے کے اندر لوبان کی خوشبو آ جاتی ہے. مومن جہاں بھی جاتا ہے تو بھلے مومن نہ بھی بولے تو بھی مومن کے وچاروں اور اس کے شریر کے اندر سے نیکی اور اچھائیوں کی وائبریشن آتی ہے. مومن کے بیٹھنے سے, مومن کے پاس رہنے سے, اگر وہ کوئی ہم کو نصیحت نہ بھی کرے تو بھی اس کے پاس بیٹھنے سے بھی ہمارے دماغ میں اچھی لہریں آتی ہیں. رسول اکرم نے ایک جگہ فرمان کیا کہ عالم آدمی کا منہ دیکھنا بھی عبادت ہے. خدا کی عبادت تو ہے ہی, لیکن کوئی علم والا آدمی ہے, علم کا یہاں مطلب کہ جس کے اندر خدائی علم ہوئے, دین کا علم ہوئے, تو فرمایا نبی کریم کہ عالم آدمی کا منہ دیکھنا بھی عبادت ہے, مومن کے ساتھ ملنا بھی عبادت ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ تم لوگ یاری دوستی نیک اچھے مومن کی کرو، اس کی سنگت کرنے سے اس کی نیک اور اچھی وائبریشن تمہارے دماغ پہ اثر کرے گی۔ پھر داخلہ دیتے ہیں کہ کسی ایک برتن کے اندر، ایک سفریے میں یا کسی اور ایسے واسن میں ہم ہینگ رکھ دیں اور کچھ دنوں کے بعد اس میں سے ہینگ نکال لیں تو خالی واسن میں سے بھی ہینگ کی باس آئے گی۔ لیکن اور کسی واسن میں ہم پھول رکھ دیں اور کچھ ٹائم کے بعد اس میں سے پھول نکال لیں تو خالی واسن میں سے بھی پھولوں کی باس آئے گی۔ سنگت کرو دیندار کی، جا بیٹھو اسی کے پاس، ہینگ کے باسن میں ہینگ کی، پھولوں کے باسن میں پھولوں کی باس۔ دوستی سنگت، اٹھنا بیٹھنا مومن کی ہونی چاہیے، کیونکہ مومن پھول کی طرح ہے، مومن کے دل میں مولا بستا ہے، مومن میں اچھائیاں ہوتی ہیں۔ مومن کو کوئی دکھ دیتا ہے نا تو مومن بدلہ نہیں لیتا، دیندارو برے آدمی خراب آدمی ہیں وہ بدلے کی سوچتے ہیں، وہ لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، مومن بدلہ نہیں لیتا، وہ خدا پہ چھوڑ دیتا ہے۔ حق کی بات اور ہے، لیکن مومن کو جو کوئی دکھ دیتا ہے تو مومن اس آدمی کو دکھ نہیں دیتا۔ اے سوگاڑ سانکھی میرا کرودھ نہ کری رے بھائی، سوگاڑ سانکھی میرا کرودھ نہ کری رے بھائی، اوا گن کرے تاسو گن ج کریے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے، مستری صاحب سو گال تو سن لی لیکن کبھی ایک سو ایک کہے تو ماروں۔ میں نے کہا تب تلک تم زندہ بھی نہیں رہو گے، کیونکہ گالیاں دو تین تک آدمی سہن کر دیتا ہے، پھر اس کا ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے، دس بیس گالیاں تو کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ یہاں پیر نے سو ایک دو سے لے کے ہنڈریڈ کا مطلب سو نہیں، یہاں سو کا مطلب انفینائٹ، نمبر لیس۔ یہ ایک کہاوت ہے، یہ ایڈیومیٹک لینگویج ہے۔ پیر کہتے ہیں کہ تم کو کوئی گالیاں دے وے غصہ نہ کرو، کرودھ نہ کرو، کسی نے تیرے سے اوگن کیا ہے، تیرا برا کیا ہے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ رسول اکرم کی ایک بات سناتا ہوں، چار پانچ برس کے بعد آیا ہوں دینداروں، شاید میں تھوڑا آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، معلوم نہیں پھر واپس کبھی آؤں۔ نبی کریم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا مکہ کے اندر تو یہودی لوگ اور کرسچن لوگ تو بگڑ گئے، لیکن آپ کے جو سگے کٹمبی تھے وہ بھی دشمن ہو گئے۔ نبی ہر روز جب مکہ جاوے یعنی خانہ کعبہ، تو اپنے گھر سے نکلے، کام کے اندر سے ہو کے خانہ کعبہ جاتے تھے۔ اب یہ جو رستہ تھا یہ سارے کا سارا رستہ یہودیوں کا رستہ تھا، جیوش تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم آ رہے تھے، ایک بوڑھی یہودی بائی وہ اپنے گھر میں سے جھاڑو نکال کے کچرا لے کے پھینکنے جاتی تھی تو نظر پڑی کہ محمد چلے آتے ہیں۔ یہودی لوگوں کو نفرت تھی، وہ کھڑی رہی۔ جب رسول اکرم اس کی باری کے نیچے بالکنی کے نیچے آئے تو اس نے یہ سارا کچرا رسول اللہ کے اوپر پھینک دیا۔ دیکھو نبی ہے، دو جہان کا جس کو ہم سرور کائنات کہتے ہیں، پیدا کرنے والا محمد ہے، دو جہان کا پیدا کرنے والا محمد ہے، تو آپ خیال کرو گے تو اللہ نہیں؟ اللہ کا نور محمد کو ملا، और मोहम्मद ने सारी सृष्टि, मोहम्मद के नूर से सारी सृष्टि पैदा हुई। हमारे गिनानों में ना कि सृष्टि का सृजनहार ब्रह्मा है, रसूलुल्लाह की हदीस में है कि खुदा ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया और मेरे नूर से सारी सृष्टि की खलकत की। तो खालिक मोहम्मद का नूर है। नबी ने ऐसा ऊपर देखा भी नहीं, ठहरे भी नहीं, मुंह भी नहीं खराब किया, यूं ही ऐसा ही पास होते चले गए। आगे चले गए तो फिर जाके उन्होंने अपने शरीर को, कपड़ों को झटक दिया और आजू बाजू वाले जो आमने सामने दुकानदार थे, यहूदी दुकानदार, खी 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 करके हंसने लगे, यानी रिडिक्यूल करने लगे। दूसरे दिन नबी साहब फिर इधर से निकले और उस भाई ने फिर कचरा फेंका। नबी इसी तरह से पसार हो गए, न गुस्सा किया, न ठहरे, न ऊपर देखा, न गड़बड़ की, चले गए नॉर्मली। यह सिलसिला महीने तक शायद चला। हर रोज वो कचरा जानबूझ के फेंके और नबी पसार हो जाए। वो आजू बाजू सामने वालने वाले जो यहूदी रोज हंसते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनका हंसना, ठीठी मस्खरा कम हो गया, लेकिन ये भाई रोज कचरा फेंके। एक दिन नबी करीम पास हुए लेकिन ऊपर से कचरा नहीं आया, रसूलुल्लाह ठहर गए। कचरा नहीं फेंका तो ठहर गए। अब वो जो नीचे उसकी बालकनी के नीचे जो दुकान वाला था, उसकी आंख मिली तो उसने कहा, मोहम्मद वो बूढ़ी बीमार हो गई, ऐसा तुम उसको कहो तो जाके मैं उसे देखने आना चाहता हूँ, मैं उसके लिए तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगना चाहता हूँ। उसको जैसे गोली लगी, इस तरह से ठहर गया, हैरान हो गया। उसको यकीन ना आवे कि मोहम्मद के मुंह से ऐसे मीठे शब्द निकल रहे हैं कि मैं उसकी बीमारी में उसको पूछना चाहता हूँ, उसकी बीमारी दूर होवे उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। तो नबी साहब ने उसको वापस कहा तो जरा चमका, जागा, गया ऊपर, डोसी को कहा, वो मोहम्मद ऊपर आना चाहता है तुम्हारी बीमारी की खबर सुन के। घबरा के खटले में से बाहर आ गई, शरीर कांपने लगा। अब अरबस्तान के अंदर जो वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर, वहां की आदत, रीत भात, प्रणाली का वगैरह ऐसी हैं कि कोई आदमी घर पे आना चाहे तो उसको हम मना नहीं कर सकते, भले दुश्मन भी हो गए, मेहमान नवाजी बहुत है उनमें। अच्छा, उसने अपने कपड़े ठीक किए, चादर ले ली, नबी करीम ऊपर आए और रसूलुल्लाह ने दरवाजे को ठोका, मैं आऊं अंदर। ये जो होडी होडी की आदत जो है, ये अरबों की आदत रसूलुल्लाह के जमाने से है, ये जो अफ्रीकनों ने सीखी, और ये बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि किसी के घर में जाओ तो यूं ही घुस ना जाओ, दरवाजे के ऊपर ठहर के उनको खबर करो। कई लोग खांसते हैं, कई लोग जोर से आवाज देते हैं, कोई दरवाजा ठोकते हैं, मतलब कि अंदर वालों को खबर दो कि तुम आ रहे हो। नबी करीम ने दरवाजे के ऊपर थोड़ी आवाज की तो वो आदमी आया, कहते हैं आइए अंदर। रसूल अकरम जैसे अंदर दाखिल हुए, वो भाई आपके पांव पे गिर पड़ी, आपने उठाया उसको, कहती है या मोहम्मद आप मेरे को माफ करो, मैंने आपकी बड़ी बेइज्जती की और मैं आपका कलमा पढ़ के मैं मुसलमान होती हूँ, जिसका ऐसा दीन है कि मैं हर रोज आपको जलील करती रही, आपके ऊपर घर का कचरा डालती रही और आपने कभी तुफ नहीं की, गुस्सा भी नहीं किया, मेरी तरफ देखा भी नहीं, कड़वी नजर से भी नहीं देखा, और आज मैं बीमार पड़ी हूँ तो मेरे लिए दुआ मांगने आए हो, ऐसा दीन सच्चा दीन है। अब मुझे बताओ, कचरा तो छोड़ दो, कोई आदमी जरा सी कोई भूल भी हमको कर दे तो हम कितने बिगड़ जाते हैं। मोमिनों, हमारा मजहब नबियों का मजहब, मैंने आपको कहा ना, ये मजहब नबियों का मजहब है। हम्बल बनो, नम्र बनो, पेशेंस वाले बनो, टॉलरेंस वाले बनो, अच्छाइयां पैदा करो, भलाइयां पैदा करो, कोई दुख देता है तो उसके साथ भी भला करो, उसके दुख का बदला मत लो, बिगड़ो मत, रिटेलिएट न करो, تو دیکھو آپ کے دلوں کے اندر خدا کا نور جگمگا اٹھے گا. آپ کو وہ سکھ شانتی ملے گی جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. عبادت بندگی کرو, مولا کو یاد کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. حضرت امام فرماتے ہیں تم اپنے رستے کو چھوڑ کر بھی, انگلش میں کہتے ہیں گو آؤٹ آف یور وے, تمہاری عادت میں نہیں تو بھی تم دوسرے کی مدد کرو. اپنا کام چھوڑ کر بھی دوسرے کی مدد کرو, دوسرے کا بھلا کرو. کبھی بدلہ مت لینا, پریم سے رہو, محبت سے رہو, ایک دوسرے کی عزت کرو, چھوٹے کو بھی بڑائی دو, مان مرتبے سے بلاؤ. تو چڑائی, گالی گلوچ, ابھیمان, روڈنیس, یہ ہمارے مذہب کی چیزیں نہیں ہیں. تو مولانا حضر امام ہمارے اوپر دین میں دنیا میں راضی ہوگا. سکھی آباد رہو. مولا آپ کو نیک توفیق دے وے, حقیقتی سمجھ دے وے. دنیا بھر کے تمام بھائی بہنوں کے لیے میری یہ دعائیں ہیں کہ مولا سب کی نیک امیدیں پوری کرے, فرمان بردار مومن بنائے, دسمن سکریت میں پورا کرے, گناہوں کو معاف کرے, نافرمانی اور گناہوں سے بچاوے. مولانا حضر امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے وے, جان مال میں برکت دے وے, آل اولاد میں برکت دے وے, روزی کمانی تندرستی زیادہ کرے, ایمان مضبوط کرے. مولا آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے. دین دنیا میں سکھی بنو, آباد بنو, طاقت والے بنو. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے, سہر بات دیدار نصیب کرے. حجیم بھلی کرا وہ یار.